इन अल्लदीना यहूदून अस्वातहुम अंद रसूलल्लाह, फिर उनकी बात आई जो कि अपनी आवाजें पस्त करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपनी आवाजों को नीचा कर देते हैं इनको, जैसे यहाँ पे आया ना आवाजें बुलंद करो, तो अब उनका मकाम, उनकी तारीफ, उनका मर्तबा जो झुका लेते हैं अपनी आवाजों को, तो ये कैसे लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? उलाइक अल्लदीन इम्तहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तक्वा, ये लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने आजमा लिया तकवा के लिए, कि इनके दिल में तकवा है कि नहीं, क्योंकि तकवा जिस दिल में होता है ना वो शायर अल्लाह का जो एहतराम करता है। सूरह हज में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आपने देखना है ना किसी के अंदर के तकवा कितना है, कितना ये इसके अंदर अल्लाह ताला का डर है, तो वमई यो आदिम शायर अल्लाह तकवल कुलूब, जो ताजीम करता है अल्लाह की निशानियों की, तो वो दिलों के तकवा की अलामत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या हैं? अल्लाह के रसूल हैं, उनसे मोहब्बत अल्लाह ताला के रसूल होने की वजह से, तो उनकी जो ताजीम है वो दिल के तकवा की अलामत है। इसका मतलब इस बंदे के दिल में तकवा है। तो अल्लाह ताला ने आजमा लिया, इम्तिहान ले लिया, वैसे तो इब्तला भी इम्तिहान लेना होता है, लेकिन अम्तहना जो होता है इम्तिहान जो होता है वो छोटा इम्तिहान होता है, लाइट इम्तिहान, ये भी एक तरह का इम्तिहान है कि कौन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और कौन पस्त रखता है, कौन उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कौन पीछे रहता है। और आवाज़ बुलंद करने में मैंने आपको बताया कि फिजिकली सिर्फ आवाज़ बुलंद करना नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के भी अब आगे अपनी आवाज़ को बंद कर देना, पस्त कर देना, कि नहीं मैं नहीं, हदीस आ गई अब तो बात ही खत्म हो गई। कहे आपको अगर नहीं पता था आप कुछ बात बोल रहे थे, आपको कोई हदीस सुना देता है आगे से, आप कहते हैं बस हदीस आ गई अब मेरी बात खत्म, अब तो कोई बात रह ही नहीं गई। ये होता है आवाज को पस्त कर देना, ये होता है अपने आप को झुका देना, ये नहीं कि फिर भी हम बहसें शुरू कर दें और हदीस के ऊपर ही जरा करना शुरू कर दें, जैसे कोई वकील है कि हदीस पकड़ ली और उसके ऊपर शुरू कर दिया बहस व तकरार, अब दूसरा आपको प्रूफ करे कि जी भी कैसे ये सही है। उलाइक अल्लाह, उलाइक का जो होता है ना इसम इशारा बाईद है, दूर के लिए, और ये इज्जत के लिए होता है, इकराम के लिए, दर्जे की बुलंदी के लिए आता है। ये लोग हैं, ये जैसे हम कहते हैं ना वो हैं वो लोग जिनका अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया, वो इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम किया, अल्लाह ने इनकी काबिलियत को जान लिया ना, और वाकई सहाबा कराम ने सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अदब और एहतराम किया और मोहब्बत का हक अदा किया, तो वाकई उनके दिल इस काबिल थे और वाकई उनके दिलों में सबसे ज्यादा तकवा था। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं चुना उनको अपने नबी का सहाबी होने के लिए, और हम जो बड़ी ख्वाहिशात तो करते हैं कि आपके जमाने में होते हम इस काबिल नहीं थे। इन्होंने कोई काम अगर आपको पसंद है लेकिन आप वो सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, तो तब भी आपने अपनी बात को, अपनी आवाज को पस्त कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, फिर इसका मतलब आपके अंदर वाकई तकवा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लहु मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, इनके लिए मग़फ़िरत भी है, अल्लाह ताला बख्श देता है ऐसे लोगों को उनके गुनाहों को, उनसे कोई कमी कोताही हो जाए अल्लाह ताला बख्श देता है, और उनके लिए बड़ा अजर भी है। पहले बख्शिश है ना फिर अजर अजीम, पहले है कि गुनाह गंदगियां हैं इनको अल्लाह ताला साफ कर देगा और फिर बुलंद दर्जे देगा, और ये किस चीज का इनाम है जब कोई इंसान अपनी आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पस्त कर दे। समझ आई बात? इतनी बड़ी बात है हदीस की, इतनी बड़ी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है कि कौन है जो फिर सबमिट करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे। तो खुद को मुत्तकी कहना, हम तो बड़े दीनदार हैं, आपको क्या पता हम में कितना दीन है, हमारा ईमान कैसा है, पता नहीं हम तकवा के किस लेवल पे हैं। तो तकवा का तो लेवल हमारा तभी पता चलेगा जब ये पता चले कि हम कितना अदब और एहतराम करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का। कितनी ताजीम है हमारे दिल में उनके फरमान की। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजरात। अब ये वही वाली बात जो मैंने अभी आपको सुनाई है कि कुछ लोगों ने आवाजें बुलंद की थी, वो पुकार रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरों के बाहर से, क्योंकि उनको पता नहीं था ना सारे हुजरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज की थे। हुजरा क्या होता है? हुजरा एक चैम्बर को कहते हैं, यानी एक कंपार्टमेंट। हमारे जो अपार्टमेंट है ना वो भी बड़े हैं, हुजरा इतना नहीं होता, हुजरा सिर्फ एक कमरे को कहते हैं। अगर आपने म्यूजियम में गए हैं मदीना में, वो म्यूजियम है जहाँ पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो सीरत से मुतालिक सारी चीज़ें हैं उनके मॉडल्स बनाए हैं, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का भी मॉडल है। तो उसमें क्या है कि एक कमरा है, उसके आगे छोटा सा सेहन है, बस इतना सा, इसको हुजरा कहते थे। ऐसे नहीं कि ड्राइंग रूम अलग, डाइनिंग अलग, बेडरूम अलग, टीवी लाउंज अलग, ऐसे ऐसे कोई चीज़ नहीं थी, या बाथरूम है या किचन है, ऐसी भी नहीं कोई चीज़, सिर्फ एक कमरा, बस वही सब कुछ है, और एक सामने छोटा सा सेहन, उसके आगे ही पर्दा लगा हुआ। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुजरात थे, आपकी अजवाज के जो साथ साथ मिले हुए थे, इन हुजरों को बाद में गिरा दिया गया था जब मस्जिद नबवी की एक्सटेंशन की गई थी। तो उस वक्त मदीना में तो इतना आहू बुका थी, इतना रोना था, क्योंकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर थे उस वक्त, उनको गिराया गया है, जो आपकी निशानियां एक तरह से। अल्लाह अकबर। तो ये भी बाद में हुआ था, और वरना आप लोग देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कोई महल्लात नहीं थे, कोई आलीशान घर नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े नहीं थे जैसे हमारे घर हैं। अल्लाहु अकबर। तो जिन्होंने आवाजें दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन वराइल हुजरात अक्सर हुम ला याकिलून, उनमें से अक्सर ना अकल नहीं रखते, अक्सर को समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, क्योंकि वो बद्दू थे ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतों में तो बैठे ही नहीं थे। देखिए सहाबा कराम के ऊपर बहुत ज्यादा रंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतों की वजह से चढ़ा था, क्योंकि वो दिन रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते थे, आपसे सीखते थे। और ये भी एक बड़ी खुशनसीबी होती है कि अगर उस्ताद की मजलिस में बैठ के सीखा जाए, वो एक तज़किया भी होता है उसके अंदर, एक अदब सिखाना भी। एक होता तो है सिर्फ इल्म ले लेना, इंफॉर्मेशन ले लेना, एक होता है तज़किया। उनका तज़किया हो गया था, उन्होंने मैनर्स सीखे थे। अब ये लोग एक तो बद्दू, ऊपर से आपसे सलम की मजलिस में भी नहीं आए, तो फिर इनको तो समझ ही नहीं थी कैसे पुकारना है, कैसे बात करनी है, लिहाजा इन्होंने ये हरकत की, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इससे मना फरमा दिया। लेकिन उनको उस तरह से सरजनश नहीं की जैसे कि उनको कहा गया, जिनको जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर ने जब बात की थी, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नंबर 2 में उनको फरमाया, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौत नबी, उनको ये फरमाया, और उसके बाद यहाँ पे इन बदुओं को कहा गया, तो वहां पे उनको ज्यादा बड़ी बात कही गई कि ये नहीं करना वरना ये ना हो तुम्हारे आमाल जाया हो जाए, तो इनको क्यों नहीं कहा गया? हालांकि इन्होंने तो ज्यादा एक तरह से बेअदबी की थी, इसलिए कि ये बद्दू थे। देखें हम हर एक को देखें उसके दर्जे के मुताबिक, यानी ये बद्दू थे ना, तो ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े थे जहां पे कोई अदब एहतराम की बात नहीं, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ये कह के कि ला याकिलून, बस ये उनको कहा गया, ये इनको अकल ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं। लेकिन सहाबा को, चूंकि उनके दर्जे बहुत बुलंद है, जिसका दर्जा जितना बुलंद होता है उससे एक्सपेक्टेशन भी उस मुताबिक होती है, जैसे नबी के से जरा सा भी कोई इधर से उधर बात हो जाए तो उसके ऊपर उनको ज्यादा पूछा जाता है बजाय कोई आम आदमी हो, इसी तरह सहाबा हैं, तो जब उनसे जरा सी आवाजें बुलंद हुई तो अल्लाह ताला ने फरमा दी, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौत नबी। तो यहाँ पे हमें इनके बारे में इस तरह से पता चलता है कि ये बाहर से चूके पुकार रहे थे और ये भी एक बेअदबी थी। तो ये सारे मैनर्स हैं जो आयत 5 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मैनर्स होने चाहिए उनको बताया गया। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि नहीं, आप ऐसे आवाज नहीं दे सकते बाहर से, ना तो उनके सामने बैठे हुए हैं तो वो आवाजें बुलंद होनी चाहिए, ना उनको बाहर से पुकारो। वलो अन्नहुम सबरु हत्ता तखरुज, अगर वो लोग सबर कर लेते जब तक कि आप बाहर निकलते उनकी तरफ, लकाना खैरन लहुम, तो इनके लिए बेहतर होता। इससे क्या पता चला, सबर में बेहतरी होती है, सबर में बेहतरी होती है, सबर करेंगे तो खैर मिलेगी। जब बेसब्री करता है इंसान, जल्दबाजी करता है इंसान, तो बाहर से खड़े होकर चीखना शुरू कर दे इसी वक्त आ जाए हमारे पास। देखिए, अगर आप पहला पारा जब शुरू हुआ उसी वक्त आप कह दें हमें सारा पढ़ा दें, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, इतने सवालात शुरू कर दें, तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सब्र से चलते रहे आज तक, तो कितनी सारी चीजें सीख ली। तो इसी तरह आप जिस मामले में भी सब्र के साथ चलते रहेंगे आपको खैर मिलेगी। इसके बाद सहाबा कराम का ये हाल हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा भी नाखूनों से खटकाया करते थे कि कहीं आपको डिस्टर्ब ना करने। तो हमने इसमें पहले भी, जैसे हमने इस्तेज़ान की आयात पढ़ी थी कि कैसे आपने किसी के घर जाना है तो आपने इजाज़त लेनी है और ज़ोर ज़ोर से घंटियां ना बजाएं, ना उसी वक़्त उनको कहें कि बस बाहर आ जाएं इस वक़्त, और या कोई सो रहा है तो वो जाग जाए, और या आप किसी को जगाने के लिए गए हैं। बाज़ दफ़ा माएँ ऐसे करती हैं, कमरे में जाती हैं तो शोर मचा देती हैं, जैसे कि उठो फौरन, और इतनी ऊंचा ऊंचा बोलने लगती हैं, तो ये भी आदाब के खिलाफ है। तहजीब के दायरे में रहते हुए, अदब के साथ, अखलाक के साथ, किसी के घर जाएं तो तब भी ऐसे घंटी पर घंटी ना बजाना शुरू कर दें। अब हम जोरों से चिल्ला तो नहीं सकते, लेकिन हमारे पास घंटी होती है, वो घंटियां बजाते ही जाते हैं हम। एक तो हम किसी से इजाजत लेके नहीं जाते उसके घर, एकदम से अचानक से आ धमकते हैं। दूसरे, अगर दरवाजा खुला हो तो सीधे ही अंदर चले जाते हैं। तीसरे, अगर दरवाजा बंद है तो फिर घंटियां बजाते रहते हैं। तो ये सारे आदाब हमें इस्लाम सिखाता है कि ऐसे नहीं करना कि ऐसे हो जाए जैसे बाहर कोई आग लग गई है, ये भी बदतसीबी है, बल्कि सब्र के साथ, सब्र में खैर है। आपने पढ़ा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जब इल्म लेने के लिए किसी सहाबी के पास जाते थे, सुबहान अल्लाह, अदब की इंतहा देखें कि दोपहर का वक्त होता तो ये नहीं करते थे उनका दरवाजा नॉक करें कि बाहर आए जी मुझे हदीस सुनाएं, हालांकि चचा के बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अहले बैत में से थे, बाहर लेटे रहते थे, बैठे रहते थे, इंतजार करते थे। जब वो सहाबी निकलते तो वो कहते आप क्यों आए हैं, आप अम्मा रसूलुल्लाह के बेटे हैं, उनके चचा जात भाई हैं, आप हमें बताते हम आ जाते। फरमाते नहीं, मैं इल्म लेने आया हूँ। देखिए, इल्म इल्म का अदब देखे उनसे, वो ये नहीं कि भाई दरवाजे खटका रहे हैं उनके, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं आके बताओ, वो इंतजार करते थे, जब वो बाहर निकलते तब उनसे पूछते थे। और हम अपने भी अदब देख लें इस बारे में, फिर जब हमने सवाल करना होता है तो हमारा क्या हाल होता है। और बाकायदा बाज लोग तो बहुत नाराज हो जाते हैं, छोड़ के ही चले जाते हैं कि भाई ठीक है, आप तो हमने पढ़ना ही नहीं, फौरी तौर पे हमें एंटरटेन क्यों नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने बदुओं के बारे में फरमाया कि अगर ये सब्र कर लेते ना तो बेहतर था इनके लिए, जब तक कि आप खुद ना बाहर आ जाते। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। इनके बारे में ये क्यों कहा गया, क्यों, मैंने जैसे आपको बताया वो बद्दू थे, इसलिए वो बद्दू थे, उनकी उनको नहीं था पता कि किस तरह से मामलात करने, वो अभी सीख रहे थे, अभी नए नए मुसलमान हुए थे। तो हम भी सब्र के साथ अगर चलते रहें तो हमें भी खैर मिलेगी। अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया इस गलती पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअ फतबय्यनू, ए ईमान वालों, अगला एटिकेट बताया गया, आप एक माशरे में रहते हैं, आपके पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, अंतुसीबू कौमम भी जहालतिन, कि तुम जा पड़ो एक कौम पर जहालत के साथ, ये ना ला इल्मी में तुम टेक ओवर करने की कोशिश करो किसी कौम के ऊपर। फतुस्बिहो अला मा फालतुम नादिमीन, तो फिर तुम जो तुमने किया है उसके ऊपर नादिम हो जाओ, तुम्हें फिर बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा था, इसकी सनद तो सनद के लिहाज से बहुत ज्यादा कोई कवी तो नहीं है ये हदीस, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, वो नए नए मुसलमान हुए थे, उनको भेजा कि आप जाएं एक कबीला है बनु मुस्तलक, उससे जाके आप ज़कात के अमाउंट लेकर आएं। अब इन सहाबी की उस कबीले के साथ पहले से कोई दुश्मनी भी थी, तो जब ये गए तो अभी रास्ते में थे, कुछ देर हो गई इनको, उधर बनु मुस्तलक को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के लिए लेने के लिए कलेक्टर भेजना है, तो अभी तक क्यों नहीं आया? तो वो लोग बाहर निकल आए देखने के लिए कि हम जाके पूछें, और बाज़ जगह पे आता है कि वो इनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर निकल आए, और इन्होंने हथियार वगैरह उन्होंने लिए हुए थे साथ, तो इन्होंने ये समझा कि ये मुझे कत्ल करने आ रहे हैं, और पहले भी कुछ दुश्मनी थी, और यानी जमाना जहालत में दुश्मनी थी। बाज़ जगह पे आता है कि किसी आदमी ने आके इनको बताया कि वो लोग तो आपको कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, तो इनको जब खतरा महसूस हुआ तो ये वापस पलट गए, और वापस जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने फरमाया कि उन्होंने ज़कात देने से भी इनकार कर दिया और वो मेरे कत्ल का भी इरादा रखते थे। ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा, गज़बनाक हुए और आपने जंग का इरादा कर लिया। उधर बनू मुस्तलक जो थे वो अगर वो बाहर आए थे इनको देखने के लिए, इनका इस्तकबाल करने, तो तब भी ये हो सकता है कि वो पीछे चले आए कि भाई क्यों वापस चले गए, और अगर वो इसलिए थे कि अभी तक आपका नुमाइंदा नहीं आया तब भी वो आ गए मदीना और आके पूछने के लिए कि क्या बात हुई कि अभी तक आया नहीं। तो जब वो आए और सूरत हाल मालूम हुई और उन्होंने कहा कि हमें तो इनसे मुलाकात भी नहीं हुई हमारी, ऐसे कैसे हो सकता था कि हम ये करें, तो तब पता चला कि ये तो सारी खबर ही बेबुनियाद थी, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने के लिए भेज देते एक लश्कर को और वहां जाके कोई लड़ाई हो जाती तो कितनी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो यहाँ पे ये नहीं है कि उनको फासिक कहा गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है वो सहाबी रसूल ही है, मगर एक आम कायदा बता दिया गया कि जब भी कोई आपके पास खबर लेकर आए, खास तौर पे अगर वो फासिक है, फासिक से मतलब क्या है कि यानी अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ने वाला है, और या अल्लाह ताला की इताअत से निकला हुआ है, या कबीरा गुनाह करने वाला है, मसलन नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, झूठा है, आपको पता है कि ये झूठा आदमी है, या आपको पता है ये लगाई बुझाई करता है, या आपको पता है कि ये मतलब कोई इसके अंदर खौफे खुदा है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे बंदे की लाई हुई खबर के ऊपर फौरन एक्शन ना ले लिया जाए। अब हमारे पास को हम किसी कौम के ऊपर जाके पढ़ने से मतलब ये, हम हमारे उसमें आप अपने डेली लाइफ में इस चीज को सोचें कि किसी ने लाके खबर दी जी फलाने ने आपके बारे में ऐसे कह दी, आपने फौरन धड़ से फोन उठाया और उसको लगे सुनाने, अब उसके आबो ख्याल में भी नहीं कि ऐसी बात है, वो एकदम परेशान हो गया, और बाद में पता चला कि ये जो जिसने आके बताई थी खबर वो तो सारी गलत थी, इसने तो कहा ही नहीं है कुछ ऐसा, इसको तो पता भी नहीं है, और अब आपकी उसके सामने कितनी हजीमत होगी, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि कहा किसी और ने था, आपने किसी और को कॉल कर लिया, या फिर ऐसा हुआ कि वो बात ही बेबुनियाद थी, तो इससे फिर कितने ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, और बाज दफा इससे भी बड़े एक्शंस ले लेते हैं लोग। ये तो सिर्फ एक मैं आपको बात बता रही हूँ फोन उठाने की, बाज दफा मिसाल के तौर पे किसी शोहर को आके उसकी बीवी के बारे में किसी ने कोई बात कह दी, जी हमने तो उसको ऐसे देखा, अब उसके बाद आके उसने तलाक दे दी झगड़ा उकड़ा, और अब तो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन ही नहीं करूंगा, ट्रस्ट खत्म हो गया और ऐसे हो गया, तो तहकीक पहले कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बेबुनियाद किसी ने भी आके कोई बात की, उठे फ्लेयर अप हुए गुस्से में आके बस कुछ भी एक्शन ले लिया। तो इसका भी बहुत ज्यादा आज के वक्त के अंदर हमारे साथ ताल्लुक है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं जिनमें अक्सर बेबुनियाद होती हैं। इवन यहाँ तक कि अस्तग़फिरुल्लाह, एक मैंने देखा कि एक जगह किसी ने शेयर किया हुआ था कि देखें फलस्तीन के अंदर ये हो रहा है ये हो रहा है। अब बाद में पता चला ये फलस्तीन की तो वीडियो ही नहीं थी, ये तो थी सीरिया में कभी हुआ था ऐसे। तो वो इधर उधर मिला मिलू के क्लिप्स और उनको बना के, और आजकल तो ये भी करते हैं किसी की बात आधी कहीं से एक क्लिप इसके साथ जोड़ा दूसरी बात के साथ जोड़ा और कुछ से कुछ बना के वो वायरल कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा और ये। अब देखें बात कुछ होती है और उसको बना के कुछ और कर दिया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी ना, इस तरह की बेशुमार बातें हैं कि लोग आजकल खास तौर पे सोशल मीडिया पे, चूंकि किसी के पास कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जिसके पास कोई भी बात आती है, जहन में कोई बात आती है वो बैठ जाता है और YouTube पे अपनी वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ लोगों में पजीराई लेने के लिए या हमारी फॉलोइंग ज्यादा हो जाए, झूठी सच्ची बातें और ऐसा कैप्शन लगा देंगे उसके बाहर के बंदा सोचेगा पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। अब वो खोल के देखेंगे तो कुछ भी नहीं, किधर से किधर की खबरें मिलाई नहीं, झूठ सच सब मिला दिए, सिर्फ वो अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए करते हैं। आजकल झूठ के ऊपर कारोबार हो रहा है क्योंकि उससे उनको पैसे मिलते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा फॉलोइंग हो जाए। अब लोग उनको उसके कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो हमारी मर्जी की बात कर रहा होता है। सियासत में देख लें, दीन के मामले में देख लें, और जिस जगह पे भी आप कभी किसी पे इल्जाम, झूठे इल्जाम, खुद ही बनाई हुई बातें, लोग कहते नहीं नहीं जी फलां को देखो वो बड़ी सही बातें बताता है। आपको क्या पता कि वो सही हैं भी कि नहीं, तहकीक हुई या सुनी सुनाई बातें या अफवाहें हैं। बाज दफा इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। किसी ने एक चीज वायरल कर दी, सोशल मीडिया पर डाल दी, अब लोगों ने उसको पढ़ा, लोग बाहर निकल आए, बिल्डिंग्स को जलाना शुरू कर दिया, मुजाहरे करने शुरू कर दिए, आगे लगानी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी, कहां से कहां बात पहुंच गई, पीछे से पता चला वो बात ही गलत थी। तो ऐसे अक्सर होता है, इसलिए हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले तहकीक तो कर लें, बड़े लेवल पे बात हो या एक घर में रहते हुए बात हो, फौरन अंधाधुंध किसी पे यकीन ना कर लें। बाज दफा लोग तोहमतें लगा लेते हैं किसी के ऊपर, तोहमत लगा दी फलान तो ऐसे है, फलान ने इतना खा लिया, फलान ने ये कर दिया, फलान ने लूट मार कर ली, फलान ने ऐसा कर दिया, तो हम भी फौरन यकीन करने बैठ जाते हैं क्योंकि हमारी अपनी भी कुछ ग्रीवियंसेस होते हैं, हमें खुद भी नहीं वो शख्स पसंद होता और फिर हम कुछ स्टेप उठा लेते हैं। इस तरह घरानों में बात हो जाती है, लगाई बुझाई की जो बात होती है, सास को आके खुद कह दिया आपकी बहू तो आपको ये कह रही थी, वहां पे बहू को जाके कह दिया जी तुम्हारी सास तो तुम्हारे बारे में ये बातें करती है, घर में कितना खराब माहौल हो गया और घर के अंदर लोग जो हैं एक दूसरे के बैर पड़ गए, एक दूसरे के साथ दुश्मनी लेके बैठ गए। तो ये देखे ना, ये जब तहकीक ही नहीं की तो फिर क्या क्या होने लगा। तो जिधर बैठे वहां पे कोई ऐसी हमने सुना ही से शी से की बात ना करें, जी सुना है ऐसे हो गया, सुना है वैसे हो गया, ऐसे आगे गलत खबरें ना फैलाएं। पता है आपको ये जो इतना बड़ा गुनाह है, ये जो लोग इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं, क्योंकि पहले जमाने में तो ठीक है दो चार लोगों तक बात पहुंची, अब ये सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह बात फैल जाती है। और वो झूठी हो तो एक ने कहीं चिंगारी लगाई, खुद पीछे होके बैठ गया, किसी को क्या पता चलेगा, और सारी जगह झूठी बातें फैल गई। किसी की इज्जत खराब हो सकती है, किसी का कोई नुकसान हो सकता है, किसी की बदनामी हो सकती है, किसी के ऊपर तोहमत हो सकती है। तो ये बात इतनी संगीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ख्वाब में देखा था, इसमें आपको दिखाया गया था कि फरिश्ते आपको लेकर गए एक जगह पे जहां पे एक आदमी खड़ा था और एक बैठा था, और जो खड़ा हुआ था उसके हाथ में लोहे लोहे के आंकड़े थे, वो उसको बैठे हुए आदमी के ना जबड़े में दाखिल करता था और उसको चीरता हुआ उसकी गुद्दी तक ले जाता था, यानी पूरा उसका चीख चीर के, जैसे समझ लें कि एक छुरा डाल दिया किसी के मुंह के अंदर और उससे सारा ये जबड़ा चीरता हुआ वो पीछे तक ले गया, सर के पीछे तक, फिर निकालता था और फिर दूसरे जबड़े में ऐसा करता था, उतनी देर तक पहला जबड़ा ठीक हो जाता था जो दूसरा सारा कट जाता था, फिर पहले वाले में डालता था, फिर यही करता था। सोचें, इमेजिन करें, ये किसकी सजा थी? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि ये एक आदमी है जो झूठा था, झूठी बातें फैलाता था और उसकी बात सारे आलम तक पहुंच जाती थी। अब देखें सुभान अल्लाह, ये हदीस उस वक्त की है, उस वक्त तो शायद सारे आलम में बात पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन आज वाकई पूरी दुनिया तक झूठी बातें फैला रहे हैं, पूरे आलम तक पहुंच जाती थी, इसलिए कहा गया कयामत तक किसके साथ यही मामला होता रहेगा। कितनी बड़ी बात है, इसको कभी सोचते भी हैं कि ये कितना सीरियस मैटर है, और हमारे दीन ने इसके बारे में क्या फरमाया? हम कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो दिल करता है चुगलियां इधर से उधर लगा रहा है, उधर से सिर्फ सोशल मीडिया की चले बात छोड़ दें, अब किसी को सोशल मीडिया पे नहीं कर रहा तो वैसे ही लगाइयां बुझाइयां इधर जाके उधर, उधर से इधर की बात, खुद ही बना बना के बातें, खुद ही इसको कुछ बता दिया, उसको खुद बता दिया, चुगलखोरी, चुगलखोर आपको पता है जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा, और अजाब कब्र जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था उसमें भी एक वजह जो थी कब्र का अजाब होने की चुगलखोरी थी, कि फूट डलवा देना, झूठी खबरें, इधर जाके तुम्हें पता है फलाने ने तुम्हारे बारे में ये कहा, उसको जाके कहा तुम्हें पता है फलाने ने ये, मैंने तो वहां पे सुना था, वो उस मजलिस में मैं भी थी, वहां पे तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, उनसे आपस में वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नफरतें पैदा हो रही हैं, बीवी को शोहर के खिलाफ भड़का दिया, शोहर को बीवी के खिलाफ भड़का दिया, सास को बहू के खिलाफ, बहू को सास के खिलाफ, नंद को जाके कहा तुम्हारी भाभी ऐसे करती है, देखो तुम्हारी भाभी ने तो ये कहा था, वो कहा था, वो तो ये करती, तो उस उनको लड़ा दिया, या उनके दिलों के अंदर आपस के अंदर कितनी गिल और कीने और बुगज भर दिए, और इसके तो हम माहिर हैं, जिधर बैठेंगे वहां पे हमें पता है कि कहाँ पे हमारी बाउंड्रीज हैं, किसी को हम ये नहीं कभी कहते तुम्हारे माँ बाप ऐसे, तुम्हारे माँ बाप ऐसे, जरूर उसको कहते हैं तुम्हारी सास ऐसी, तुम्हारी नंद ऐसी, तुम्हारे, उनको पता है कि ये तो इनकी तो बात सुन ही लेगी, लिहाजा उनकी बातें करते हैं। तो देखो ये फूट डलवाना, ये चुगलखोरियां करना, ये अजाब कब्र भी का बाइस भी है और जन्नत से महरूमी का भी। तो कहाँ कहा गया कि आप भी किसी की भी बात सुन लो तो फौरन उसके ऊपर कोई एक्शन ना लो, बल्कि उसकी तहकीक कर लिया करो और उसको आगे फैलाना ना शुरू कर दो। अब हमारे पास आई कोई बात, हदीस है जी, पता चला बाद में ऐसी कोई हदीस ही नहीं थी, अगर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध सकते हैं तो और तो फिर किसी पे भी बांध सकते हैं, अगर उनको भी नहीं छोड़ा तो फिर कोई और कैसे रह गया? कभी उलमा की बातें, ये फलां आलिम ने ये कहा, उन बेचारों ने कहा भी ही नहीं होता, कई दफा आपने देखा इमाम काबा का ये फरमान है, उन्होंने आज खुतबे में ये कहा, कुछ भी नहीं उन्होंने खुतबे में कहा होता ऐसा, और खुद ही बना के ताकि लोग ज्यादा तवज्जो दें। तो कभी भी वन साइडेड बात सुन के फैसला ना कर लें, कभी वन साइडेड बात सुन के रंजिशें ना पाल लें, कदूरतें ना दिल में रखें, तहकीक कर लें, दलील के बगैर ना बात करें, और कई तलाकें इस वजह से हो जाती, सोचे घर टूट जाते हैं, ये एक्सट्रीम केस भी देखे गए हैं। वालमु अन्न फीकुम रसूलुल्लाह, जान लो तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल हैं, इस बात को फॉर ग्रांटेड ना लो, यानी अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर अभी मौजूद हैं, वो जो फैसला कर लें, वो जो बात कर लें, उसको तुम समझो, उसको मानो, तुम्हारे अंदर वो है। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों में मौजूद थे, ये वो पता था उनको, लेकिन उनको याद दहानी कराई गई कि सबसे ऊपर उनकी बात है, सबसे ज्यादा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के दोस्त भी थे, किसी के शौहर भी थे, किसी के ससुर भी थे, किसी के दामाद भी थे, इन रिश्तों के अंदर जब होता है इंसान, तो ये ना भूल जाना कि वो अल्लाह के रसूल है और तुम्हारे अंदर। और लो युतियोकुम फी कसीरिन मिनल अम्री लअनित तुम, अगर वो सारी उन बातों को मानना शुरू कर दें जो जो तुम कहते जा रहे हो, तो तुम अपने आप को ही मुश्किल में डाल लोगे। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते थे अल्लाह की तरफ से होती थी। अगर आप ये चाहते हो कि हमारी ही बातें वो मानते रहें, बस जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही वो करें, तो तुम्हारी अपनी जान मुश्किल में पड़ जाएगी अगर वो तुम्हारी बात को ही मानते रहें। क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अगर वो सबकी बातें कबूल करने लगे तो फिर तुम्हारे लिए मसला होगा। आप देख लेना, सहाबा को सुलह हुदैबिया में हम पढ़ चुके हैं, उनको पसंद नहीं आया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये सुलह कर ली। लेकिन अगर आप उनकी बात को पसंद कर लेते, उनकी बात को मान लेते कि नहीं होनी चाहिए सुलह, तो वो जो सुलह की जो खैर थी वो कभी ना पा सकते। वो फतेह मुबीन थी, उसकी वजह से आगे कितनी खैर निकली, तुम इस सारी खैर से महरूम हो जाते। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानो, आपको प्रेशराइज ना करो कि वो तुम्हारी बातें माने। इससे ही हमें पता चलता है कि जब हमको भी मशवरा भी देना किसी को, तो उसके सर पे ना सवार हो जाएंगे, बस मेरा मशवरा मान लो, मैंने ये कहा है तुम्हें मानना ही है। अगर वो कुछ उलट कर लेता है तो फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, मैंने तुम्हें ये कहा था, तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी, मेरी बात मानते तो ये ना नुकसान होता, ये ना होता। और हम उसको इतना जिज करते हैं, फिर क्या हम अकले कुल हैं? या हमारे मशवरे ही सबसे बड़े चीज होते हैं? या हम ही सबसे ज्यादा समझदार और अकलमंद हैं? तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा मशवरा क्यों, हमने दे दिया था मशवरा, उसको माना क्यों नहीं तुमने? तो मशवरा देना, हमने सूरह शूरा में पढ़ा था, मशवरा जरूर दे दे, लेकिन उसके बाद दूसरे को प्रेशराइज ना करें। वो माने ठीक है, नहीं माने भी तो कोई मसला नहीं। तो सहाबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि इम्पोज मत करो। अगर कोई देखे मिसाल के तौर पे डॉक्टर है और मरीज आके कहे कि जी मेरा जो है, मैं जिस तरह आपसे कह रहा हूँ उस तरह से आप मेरी मुझे ये दवाई दें और इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट करें, तो फिर तो डॉक्टर तो उसकी तो डॉक्टर ही गई, और मरीज के कहने पे चलता रहे तो बस फिर हो गया वो ठीक। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वही की बात को छोड़ के और इनके मशवरों पे ही चलने लगे, तो फिर तो खुद ही ये मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप देखें, उस्ताद भी अगर सारे स्टूडेंट्स की सुनना शुरू कर दे, जी आप ही बताएं कि हमने क्या करना, हमने थोड़ा सबक पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, टेस्ट कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, क्लास का टाइम किस दिन होना चाहिए, दिन कौन सा होना चाहिए, किसको ग्रेजुएट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो फिर तो देखें काम हो गया। तो आपकी ताज़ीम में एक ये भी है कि जो आप कह रहे हैं वो मानी जाए, और आपसे मशवरा मांगे तो आप मशवरा दें, लेकिन उसको इम्पोज ना करें। इनके पीछे चलो, इनसे आगे मत चलो, इताअत करो, खुद लीडर ना बन जाओ। अगर वो इताअत करें बहुत से मामलात में तुम्हारी, तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान को महबूब बना दिया। लेकिन तुम इनकी बात को मान लेते हो फिर भी, जैसे सुलह हुदैबिया में थोड़े से उनको हुई दुख हुआ, गम हुआ, खास तौर पे अबू जंदल को देख के दुख हुआ था, लेकिन फिर वो आपकी बात को मान गए, चाहे उनके नफ्स पसंद नहीं भी करते थे लेकिन मान गए। वो क्यों माने? इसलिए कि अल्लाह ताला ने महबूब कर दिया तुम्हारे दिलों में ईमान को, यानी ईमान को सजा दिया तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिलों को ब्यूटिफाई कर दिया ईमान के जरिए। ईमान पता है दिलों को खूबसूरत बना देता है। जिस दिल में ईमान है वो दिल खूबसूरत है, जिस दिल में ईमान नहीं वो बदसूरत दिल है। हम अपने बाहर के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं कि हम बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन दिल अगर ईमान के बगैर है तो कभी दिल है बदसूरत दिल है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इताअत करना आसान कर दिया, इसलिए कि उसने तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान को महबूब बना दिया, वह दिलों की जीनत बना दी, वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और इसको मुज़य्यन कर दिया, इसके जरिए ब्यूटिफाई कर दिया तुम्हारे दिलों को, महबूब भी है तुम्हें, इतना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर ईमान है। ईमान की भी हलावत होती है, आपको पता है, मिठास होती है, मिठास होती है। हाँ, आप सल्लम ने फरमाया ईमान की हलावत उसको मिलती है ना, जिसके लिए, तीन तरह के लोगों का फरमाया, लेकिन एक उनमें से है जिसके लिए कुफर में जाना ऐसा हो कि जैसा आग में जला दिया जाना। तो सुभान अल्लाह, यानी उसके लिए ईमान इतना महबूब हो कि कुफर में जाने का तो सोच ही नहीं सकता। कुफर उसको इस कदर यानी नापसंद है और इस कदर काबिले नफरत है कि जैसे आग में डाला जाना। ईमान उसको पसंद, ईमान उसको प्यारा लगता है, वो ईमान की वजह से खुश होता है। तो ये जो ईमान जब मजबूत होता है ना दिल में, तो फिर इंसान इस दीन से शर्माता नहीं है कि किसी को पता ना चल जाए मैं मुसलमान हूँ, फिर उसको फख्र होता है इस दीन पे, फिर अल्लाह रसूल की बात को वो सबसे ऊपर रखता है, इसको महबूब जो है ये ईमान, फिर उसको अल्लाह रसूल की पहचान होती है। तो हम अगर हमारे दिलों में ईमान मजबूत है, हमें महबूब है, जैसे अब हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे अल्लाह रसूल की बात को माने, जैसे यहाँ पे आया कि अगर वो इताअत कर लें बहुत से मामलात में, अलबत्त आप सल्लम तुम्हारी बात को मान लें तो वो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तो तुम उनकी बात को मानो, और ये बात मानना तुम्हारे लिए आसान इसलिए हो गया है क्योंकि तुम्हारे दिलों में ईमान को अल्लाह ताला ने महबूब बना दी। तो अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी अल्लाह रसूल की बात को सबसे ऊपर रखें और उनके लिए मुश्किल ना हो, तो उनके दिलों में भी ईमान को मजबूत करने की कोशिश करें कि ईमान जड़ पकड़ जाए, और जब ईमान महबूब हो जाता है, जो चीज महबूब हो जाती है ना, फिर उस इंसान उसके लिए कुछ भी तकलीफ उठा लेता है, फिर इंसान उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, अमल करना मुश्किल नहीं होता। तो सहाबा करम को ईमान बहुत महबूब था और उनके दिलों की बहार था, उनके दिलों में सजा हुआ था, इसीलिए फिर कोई इताअत मुश्किल रह ही नहीं गई थी, और इसीलिए मुश्किलात से को भी खंदा पेशानी से वो कबूल कर लेते थे, फिर भी दिलों को में सुकून उनके भरा हुआ था। तो जब दिल में ईमान होता है ना, मुसीबतें भी आती हैं तो इंसान पुरसकून रहता है, मुसीबतों से भी गुजर जाता है और सबर करता है, और मुसीबतों में भी अल्लाह से राजी रहता है। तो ये कुरान है जो इस ईमान को ग्रो करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक पौधा है ना, उसको पानी की जरूरत होती है, अगर पानी आप ना दें तो पौधा मुरझाने लगता है, इसी तरह ईमान के लिए कुरान है, कुरान वो पानी है, वो वही की बारिश है जो इस ईमान को, देखे कुरान करीम में भी तो कुरान को बारिश से तस्बीह दी गई है ना, तो कुरान वो बारिश है जिसके जो दिलों पे पड़ती है तो ईमान और ग्रो करता है, मजबूत होता है। तो इस पौधे को इस बारिश की जरूरत रहती है, लेकिन हम इसी तरफ नहीं आते। आप सल्लम ने फरमाया ईमान भी दिलों में बोसीदा हो जाता है जैसे कि पुराना कपड़ा बोसीदा हो जाता है, इसी तरह ईमान बोसीदा हो जाता है, लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं रहती, इसकी परेशानी नहीं होती कि हाय मेरे ईमान का क्या लेवल है, मेरे ईमान बोसीदा हो गया है या फिर सजा हुआ है हमारा दिल इस ईमान के साथ, इतना रोशन है, इतना मजबूत है कि मेरा दिल सज गया है इससे। अगर हमें अहमियत हो ना इस कुरान की, तो हम इसके छोड़ने के बहाने ना ढूंढें, हम मसरूफियात के बहाने ना करें, अब मेहमान आ गए, अब बच्चों की छुट्टियां हो गई, अब हम कहीं चले गए, अब ये हो गया, अब वो हो गया, नहीं, बाद में क्लास ले लूंगी, अभी तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, मैं ये कर लूंगी, वो कभी रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं जाती फिर। तो ये हम इसे भागने के बहाने ना ढूंढे, अगर वाकई हमें अपने ईमान को महबूब रखने की फिक्र हो, इसके सजने की फिक्र हो, इसको तरोताजा रखने की फिक्र हो, इसको मजबूत करने की फिक्र हो, हम इसको पानी दें। देखिए हम कहीं वेकेशन पे भी जाते हैं ना, तो हम अपने पौधों को किसी की ड्यूटी लगा के जाते हैं, इनको पानी देते रहना, क्योंकि हमें पता है वो वापस आए तो ये मर चुके होंगे अगर हमने पानी ना देने का ख्याल किया। तो इसी तरह ईमान भी बिल्कुल मुरझा जाता है अगर आप उसको ये कुरान का पानी नहीं देते। तो हर एक का ईमान उसकी कोशिशों के मुताबिक ही फिर सजता है और महबूब होता है और मजबूत होता है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो मुरझा जाएगा। अगर हम भी चाहते हैं हमारा ईमान हमें महबूब हो जाए और इसके जरिए हमारे दिल खूबसूरत हो जाएं, सज जाएं, ये दिल की जीनत बन जाए, तो फिर हमें इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। और वो कर रहा है इलेकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसियान, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुफर को और फुसूक गुनाहों को, कबीरा गुनाहों को और इसियान को, सबीरा गुनाहों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए काबिले नफरत बना दिया। तुम्हें नफरत है इनसे, तुम पसंद नहीं करते कि गुनाहों में पड़ जाओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगते, गुनाह अच्छे नहीं लगते। देखिए एक चीज होती है गुनाह बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, और एक चीज होती है गुनाहों से नफरत हो जाना। जब दिल में ईमान मजबूत हो जाता है ना, तो वाकई गुनाहों से नफरत हो जाती है, फिर गुनाह की तरफ आना इंसान को अच्छा नहीं लगता, फिर कराहत महसूस करता है वो गुनाहों से, फिर कभी गुनाह हो भी जाता है, ये नहीं कि कभी उसे गुनाह ही नहीं होगा, फिर कभी गुनाह हो भी जाता है तो इंसान को इतना दुख होता है कि मेरे से क्यों ये हो गया, आई मैंने क्यों ये कर बैठा। ये वो फौरन तौबा की तरफ आता है, इसलाह की तरफ आता है, फिर इंसान उसी के ऊपर चलता नहीं रहता, उस पे कायम नहीं हो जाता। देखिए ना फर्क पड़ता है जब इंसान के अंदर ईमान आता है ना, तो उससे देखिए कैसे फिर इंसान की दुआएं भी फिर ये बन जाती है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिना, अल्लाह मेरे ईमान को मेरे लिए महबूब बना देना और मेरे दिल को जीनत दे देना इससे, इसके जरिए, और मेरे लिए कुफर और फुसूक और इसियान काबिले नफरत बना देना। अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं, सुभान अल्लाह। तो दिलों के में ईमान को सजाने की फिक्र होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसे ही महबूब नहीं हो जाती, एफर्ट करें इसके लिए। अल्लाह ताला आपकी एफर्ट होगी तो अल्लाह ताला इसको जरूर महबूब बना देगा, फिर दुनिया की हर चीज से ज्यादा ये महबूब होगा कि जान भी चली जाए तो ईमान ना जाए, क्योंकि ये मुझे इतना महबूब है कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। समझ आई बात? अब ईमान के भी लेवल्स होते हैं ना, सब ईमान एक लेवल के नहीं होते। हम सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन आपका क्या ख्याल है सबके ईमान एक लेवल के नहीं, किसी का बहुत कमजोर है, किसी का उससे मजबूत है, किसी का उससे मजबूत है, और सहाबा के तो सुबहान अल्लाह पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, उनके ईमान नहीं हिलते थे। अब उनको नई भी बात पसंद आई, उनको ये लग रहा है कि ये गलत फैसला हो रहा है, ये सही नहीं है, हम क्यों झुक के फैसला करें, ये क्यों हम इनके साथ झुक के सुलह करें, हम कोई बातिल पे हैं, हम हक पे हैं, हम क्यों ऐसे बिछे इनके आगे, हम सुलह के लिए क्यों इतने आगे आगे हो, हम क्यों ना लड़े। लेकिन उन्होंने अपनी अकल को एक तरफ रख दिया, अपनी ख्वाहिश को एक तरफ रख दिया, अपने दिल को एक तरफ रख दिया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह का फैसला कर दिया तो बस कर दिया। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ऐसा हो जाए कि कोई और अल्लाह का हुक्म आ जाए, एहराम नहीं खोल रहे थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम खोल दिया तो उन्होंने भी खोल दिया। हजरत उमर ने आके इस बात को फरमाया था कि या रसूलल्लाह हम हक पे हैं फिर हम क्यों दबे, लेकिन सिर्फ इतनी बात के ऊपर भी इतना नादम हुए कि सारी जिंदगी इसके ऊपर शर्मिंदा रहे, सारी जिंदगी सदको खैरात करते रहे, तौबा इस्तिगफार करते, मैंने ये भी क्यों कह दिया। और आज कितनी बड़ी बड़ी जुर्रतें होती हैं। तो देखें जब ईमान आता है ना, इंसान की दिलचस्पियां भी फर्क हो जाती हैं, इंसान की सोच फर्क हो जाती है, इंसान की जो मसरूफियात हैं वो फर्क हो जाती हैं। ईमान जिंदगियों को बदल देता है, और ईमान की जब मोहब्बत आ जाती है कि इंसान सीने से लगा ले इसको कि ये सबसे बड़ी चीज है, बड़ी नेमत है, तो फिर तो छोटी-छोटी बातें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। फिर इंसान छोटी बातों को खातिर में नहीं लाता, छोटी छोटी बातों को इश्यूज नहीं बनाता। तो अपने ईमान को मजबूत करने के लिए इसको आबियारी दें कुरान के पानी की, और ये दुआएं करें कि अल्लाह ताला कराहत दे दे मुझे, नफरत दे दे कुफर से। कुफर में जाना मुझे इतना बुरा लगे जैसे आग में जलना, कोई नहीं कहेगा मुझे आग में जला दो, ऐसे कुफर में जाना हो, फुसूक या कबीरा गुनाह उनसे भी नफरत हो जाए। मिजाज बदल जाते ना जब ईमान आता है, तो दिल चाहता ही नहीं है। फिर ये नहीं इंसान कहता आए हम क्या, हमारे ऊपर तो इतनी पाबंदियां, अब ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अब वो काम पसंद है, वो दिल करता है करने को, ऐसे वैसे बन के रहने को जैसे काफिर हैं, लेकिन अब क्या करें, हाय 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 निकलती है फिर, बजाय इसके कि नफरत करें इस चीज से कि ये गंदी बात है, ये बुरे काम है, ये बेहयाई है, ये फहाशी है, मुझे नफरत है इसे, बजाय नफरत करने के हाय हाय करते, हाय मैं नहीं कर सकती। और इसियान, एक तो छोटे गुनाहों की भी बात है और कभी कभी गुनाह करना, ये भी इसियान में आता है कि ऐसे भी मुझे इससे भी नफरत हो जाए, ये कभी गुनाह करूं, ऐसे हम कहते हैं ना, तो क्या हो गया, सारे तो इतने करता है, मैंने अगर इतना सा कर लिया तो क्या हो गया। उलाएका हुम राशिदून, यही है जो हिदायत याफ्ता है। देखें फिर ईमान था तो सहाबा ने माइंड नहीं किया कि हमारा तो मशवरा ही नहीं माना, हमने तो ये कहा था, हमारी तो बात ही नहीं सुनी, फिर वो ये नहीं माइंड करके बैठ गए। उनके लिए ईमान महबूब था, ईमान लोगों को जोड़ देता है और ईमान से दिल खूबसूरत हो जाते हैं। तो चलें अपने दिलों को खूबसूरत करते हैं ईमान के जरिए। फ़ज़लम मिनल्लाहि व निअमतन, ने अल्लाह ताला का ये बड़ा ही फजल है कि जिसको ईमान की मोहब्बत दे दे और जिसको नफरत दे दे कुफर से, फुसूक और इसियान से, फजल है और उसकी नेमत है, ये सबसे बड़ी नेमत तो ईमान ही है। अल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला लेकिन इल्म वाला हिकमत वाला है, उसको पता है किसको देना है किसको नहीं देना, किसका दिल इस काबिल और किसका नहीं है, किसके दिल में तड़प है, कौन वाकई बनना चाहता है ऐसे, और कौन बस ऊपर ऊपर की बातें करता है। तो इसमें सहाबा की तारीफ है, वो ऐसे थे, उन्होंने इसमें वाकई ए ग्रेड लिया था। तो तुम लोग भी ये समझ लो, ये अल्लाह का फजल है, ये सूरत का सेंटर है, ये अल्लाह का फजल है, इसमें डीप मैसेज है, जिसको चाहे ये फजल अता करे, ये अल्लाह ताला की नेमत है। कुरान, ईमान की मोहब्बत, कुफर फुसूक इसियान से नफरत, आज नफरत ने नहीं है, आज कुफर, चलो कुफर से शायद किसी को नफरत हो, लेकिन फुसूक बड़े बड़े गुनाह हैं जिनको लोग इतना पसंद करते हैं, बल्कि उनको कहते हैं अगर अगर ये नहीं है तो फिर तो आप तो पता नहीं कोई बैकवर्ड ही लोग हैं। देखिए फहाशी है, उसको लोग कहते हैं, अगर आप कह देंगे कि ये बेशर्मी की बात है, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं आप पागल हैं, आप बेवकूफ हैं। उन्होंने फुसूक को महबूब बना लिया और ईमान की कोई वैल्यू नहीं। जहां जगह नाच गाने हो रहे हैं, फोहश सीन्स हो रहे हैं, ऐसी फोहश फिल्में, ऐसे ड्रामे, ऐसी बेपर्दगियां, ऐसी मिक्स गैदरिंग, ऐसी शादियां, ऐसी चीजें, आप देख लें कि किधर किधर फुसूक गुनाह को, हराम को खाना, हराम कमाइयाँ, हराम कमाइयों के जरिए ऐश करना, ये तो कुछ मसला ही नहीं है, ये तो महबूब बन गए, और ईमान की कोई वैल्यू नहीं रही, और इसियान नाफरमानी को तो कुछ समझते ही नहीं। तो उलट होना चाहिए, क्या चीज महबूब होनी चाहिए और किस चीज से नफरत होनी चाहिए। लेकिन नफरतें नहीं है, कराहियतें नहीं है, उनको बुरा ही नहीं जानते, बल्कि गुनाह को अच्छा समझने लगे और नेकी को और अल्लाह की फरमाबरदारी को बुरा समझने लगे। यही ट्रेंड्स है ना, अक्सरियत इसी तरफ जा रही है ना। आप किसी फील्ड में भी देख लें, अल्लाह की नाफरमानी है, औरत अपनी पिंडलियों को नंगा करे, एंकल्स उसके नंगे हों, अल्लाह की नाफरमानी है। उन्होंने इसको महबूब बना लिया कि ये तो फैशन है, ये तो अच्छाई है, डीप गला पहनना, स्लीवलेस पहनना, उसको महबूब बना लिया, तंग कपड़े पहनना, अपनी जेबो जीनत को जाहिर करना। कोई आज कहे कि नहीं इसको छुपाना अल्लाह का हुक्म है, तो वो कहेंगे आप पता नहीं कौन सी सदी से आए हैं। तो ये सहाबा का रास्ता था, ये उनका रास्ता था जो इनसे अल्लाह ताला राजी हुआ, और हमें भी यही रास्ता इख्तियार करना है। शदीद नफरत होनी चाहिए गुनाहों से, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए ना हमारे घरों में, ना हमारे दिलों में, ना हमारी सोसाइटीज़ में। लेकिन चलो सोसाइटी तक तो हम बाद में पहुंच सकते हैं, दिल में तो हमारे अपना जोर है ना। क्या दिलों में नफरत है? या इट्स ओके, ये भी चलता है, कोई बात नहीं। गैर महरूमों के साथ घुल मिल के रहना, गपशप करना, हंसी मजाक हो रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, ये भी सारा अच्छा ही है। किसी चीज को भी जो अल्लाह और उसके नबी ने मना किया हो, उसको हमने महबूब बना लिया। बदनज़मी, बेअदबी, वालदैन के साथ बुरा सलूक करना, उनके एहतराम को मलहूज़े खातर ना रखना, सब नाफरमानी के काम थे, सब गुनाह के काम थे। नमाजें छोड़ देना, इस चीज से हमें कोई नफरत नहीं है, हालांकि कबीरा गुनाह है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, तो साहब कोई भी नहीं आजकल नमाज पढ़ता, तो हमें खास कोई नफरत नहीं आती गुनाहों से। इसका मतलब है हमारे दिलों में ईमान नहीं है महबूब, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वइन तौइफतानि मिनल मुमिनीन इक्ततलू, और आप देखें आम सोसाइटी में जब आप रहेंगे तो क्या होगा, कभी इख्तलाफ भी होगा, कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे, इंसान है ना। तो मोमिनों में ये नहीं कहा गया कि काफरों के अंदर होती होगी लड़ाई, ईमान वालों में तो कभी लड़ाई नहीं होती, नहीं ईमान वालों में भी लड़ाई हो सकती है, वो भी फिर वो मोमिन ही रहते हैं, क्योंकि खवारिज ने कह दिया था, आपको अगर याद हो मैंने इसमें बताया था आप लोगों को, जब हजरत अली की हमने बारे में पढ़ा था, तो खवारिज को ये था कि हजरत अली ने जो हजरत मुआविया के साथ जो जंग हुई थी, तो इनमें से एक ही हक पे हो सकता है, दोनों तो हक पे नहीं हो सकते। या हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के साथ जब जंग हुई थी, उसके जंगे जमल के बारे में उन्होंने कहा था कि आयशा रजी अल्लाह तआला या तो सही है या फिर वो सही है, एक इनमें से सही है और दूसरा बातिल है, और दूसरा आपस में जंग हुई है, तो एक ही ईमान वाला है और दूसरा ईमान वाला नहीं हो सकता, तो जब ईमान वाला नहीं हो सकता तो उसको तो खत्म कर देना चाहिए, और उसके माले गनीमत भी लेना चाहिए, और उसको कैदी भी बनाने चाहिए उसके, जो कि हजरत अली ने नहीं किया था। तो यहां से हमें पता चला कि यही सबसे बड़ी उनके खिलाफ हुज्जत थी उनके बारे में, कि वो लोग कहते थे कि कबीरा गुनाह का करने वाला काफिर हो जाता है। तो बेशक के अगर दो ग्रोह आपस में जंग पे भी उतर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो ईमान वाले ही नहीं रहे, ईमान ही खत्म हो गया, नहीं। यहाँ पे बताया गया दो ईमान वाले ग्रोह, और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसी आयत को लेकर गए थे कि देखो कुरान के अंदर ये है कि दो ईमान वाले ग्रोह भी अगर लड़ पड़ते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको ईमान से खारिज नहीं किया, उनको फिर भी ईमान वाला ही काउंट किया है। अस्लिहो बैनहुमा, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। यानी जब भी दो मुसलमान भाई आपस में लड़ पड़े तो आपका क्या काम होना चाहिए, थर्ड पार्टी को बीच में पड़ के उनकी सुलह करानी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो दो लड़ पड़े, हमें क्या, लड़ते रहें जो मर्जी करें, हम तो बीच में ना पड़े, हम तो अच्छे बन के रहें, हम तो दोनों तरफ अपना अच्छा फेस ले जाके दिखाएं और इसको उधर की बता दें, उसको उधर की बता दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि कहा गया तुम सुलह कराओ। क्यों? अस्सुलहु खैर, सुलह खैर है, सुलह में ही भलाई है, सुलह अच्छी चीज है। तो दोनों को सुलह के ऊपर लेकर आओ। ये एक वाहिद चीज है जिसके बारे में ये फरमाया कि अगर झूठ भी बोलना पड़े सुलह कराने के लिए तो आप कराएं। झूठ के आपने दूसरे को जाके कह दिया, देखिए वो तो आपको बड़ा याद करती थी, बड़ी आपके बारे में अच्छी बातें कर रही थी, वो तो आपकी बड़ी तारीफें करती है, वो तो ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो गया, बड़ा पछता रही है कि हमारे दरमियान लड़ाई क्यों हो गई, वो तो चाहती है सुलह करना, हालांकि उसने कोई भी नहीं चाहा। हम इस मामले में तो कभी भी नहीं ऐसे करते, बल्कि उल्टा लगाई बुझाई करते हैं। देखो उसने तो तुम्हारे बारे में ये कहा, वो तो बुरी बातें तुम्हारे बारे में कह, और उनके दिल दूर होते जाते। पहले बात छोटी सी शुरू हुई थी, जब दोनों तरफ लगाई बुझाई खूब अच्छी तरह आग लगा के उनको और ही दूर कर दिया। आप देख लें, दो मियां बीवी में जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, लोग सुलह कराने वाले कम होते हैं, ज्यादा लोग क्या होते हैं, इधर जाके उसको कहते हैं, देखा उसने ये कहा ना, उसका मतलब ये होगा, देखा उसने ऐसे कहा ना, देखो ऐसे होगा। ताकि कभी भी ये आपस में जुड़े ना, ताकि इनकी सुलह ना कहीं हो जाए। तो हमें क्या हुक्म दिया गया है, असले हूं बैनहुमा, तो ये सलाह कर दो उन दोनों के दरमियान, उन दोनों पार्टीज के दरमियान सुलह कराओ। फ इन बगत एहदाहुमा अलल उखरा, अगर बगत बगावत कर ले, ज्यादती कर ले, यानी कोई जैसे कोई खलीफा है या जो कोई बड़ा बादशाह हुक्मरान है जो अदलो इंसाफ करने वाला है, मगर सिर्फ जाती किसी बात से कोई झगड़ा खड़ा हो गया, नौबत आ गई, किताल तक आ जाए, तो और एक फरीक उनमें से मान ही नहीं रहा, कोई सुलह कराने भी आया है तो उनमें से मान नहीं रहा, तो अब क्या है, जो फरीक ज्यादती कर रहा है उसके खिलाफ जंग की जाए। ठीक है, ये मतलब एक बड़े बेस के ऊपर है जबकि किताल हो रहा है, यानी दो फरीक आपस में जब झगड़ पड़े ना, तो तीसरा किसी नाहक के साथ ना दे, बल्कि एक अगर मान गया तो फिर दूसरे को मनाने की कोशिश करे, उसको प्रेशराइज करे। फकातिलुल्लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, तो फिर तुम लड़ो उसके साथ जो ज्यादती करे, यहां तक कि वो पलट आए अल्लाह के हुक्म की तरफ, अल्लाह के हुक्म की तरफ आ जाए वो, यानी कि वापस वो सुलह सफाई हो जाए दोनों के दरमियान, इन 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 दोनों के दरमियान सुलह करा दो। फिर अब ये हमें यहां से पता चलता है, इसके भी लेवल्स है ना। देखें, एक दफा कहा किसी को कि भाई आप सुलह कर लें, उनकी सुलह सफाई की कोशिश की, सुलह सफाई एक ने तो मान लिया, दूसरे ने नहीं माना, तो उनके दरमियान अब नहीं हो रही इसकी वजह से कि एक अड़ गया है, एक जिद पे आ गया है, एक अपनी बात से हट नहीं रहा, तो फिर क्या हो सकता है कि उसके साथ मिलके जो जो मान गया उसके साथ मिलके फिर दूसरे के साथ लड़ाई करके और उसको वापस लाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, जालिम हो या मजलूम। तो हजरत अनस ने पूछा, तो मजलूम होने की हालत में तो हमें समझ आता है कि हम उसकी मदद करें, लेकिन जालिम की मदद हम कैसे करें? तो आपने फरमाया, जालिम को जुल्म से रोक के, कि उसको बाज करो कि जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसके साथ मामला किया जाए। और फिर फरमाया, फइन्फाअत, फिर जब अगर वो पलट आए, फअस्लिहु बैनहुमा बिल अदल व अक्सितु, तो फिर उनके साथ अदल के साथ मामला करो, इंसाफ की बात करो जब वो वापस पलट आए। ये ताकीद के लिए बार बार कहा जा रहा है कि इसलाह करो, वो पलट भी आया दोनों की सुलह करा दो, लेकिन अदल के साथ, इंसाफ के साथ। यानी ये नहीं है कि एक तो अमीर है तो हम उनकी साथ देना शुरू कर दें, उनको इसलिए क्योंकि ये अमीर हैं, कल को मेरा इनके साथ काम पड़ेगा तो उनके साथ खड़े हो जाएं, या ये गरीब है, हाँ ये तो बेचारा है इसका साथ दे दूं, या ये तो मेरी अम्मी है तो इनका मैं साथ दूं, या ये तो मेरे भाई बंद है, हमारा कबीला है, हमारा खानदान है, इसका मैं साथ नहीं, अदल के साथ। वो अकसितु, और इस यानी जो भी अकसितु मतलब यानी जो इंसाफ के रास्ते में रुकावटें आए उनको हटा दिया जाए, इसलिए कि ये इन्ना अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों के साथ। अब देखें इसके अंदर, लेकिन ये देखना होगा, यहाँ पे कहा गया ना कि एक के साथ मिलके आप दूसरे के साथ लड़ें, ये तब होगा जब बिल्कुल वाजे हो कि कौन नाहक है और कौन हक पे है। लेकिन अगर हक और बातिल गड़मड़ है, समझ नहीं आ रही है किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं देना चाहिए, तो फिर अलग रहें, जैसे कि बाज़ सहाबा ने किया था। कबायर सहाबा थे वो, नहीं इन जंगों में जो आपस में मुसलमानों की हुई थी, जैसे हज़रत अली हज़रत आयशा की हुई, या हज़रत अली और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इनकी हुई, तो फिर वो इनमें किसी के साथ भी नहीं खड़े थे। तो अगर तो ये वाजे है कि कौन नाहक पे है, तो फिर तो आप ठीक है उसके पास जाएंगे, प्रेशराइज करेंगे। अब हमारे जंगों की हद तक तो नहीं, लेकिन हम मतलब घरों में लड़ाई है तो फिर प्रेशराइज करेंगे उसको कि वो सुलह कर ले। और इसके अंदर मैं आपको ये भी कहूंगी कि जैसे हम घरों की सतह पे देखें तो बाज दफा बच्चे हमारे पास लड़ते हुए आ जाते हैं कि जी इसने मेरे साथ ये ज्यादती कर दी इसमें। अब माएं क्या करती हैं, जाओ मेरा दिमाग ना खाओ, जाओ लड़ते रहो, लड़ो मरो, जाके जो मर्जी करो, अब मेरे से तो नहीं कुछ आता, मैं तो थक गई। नहीं, उस वक्त भी इसलाह, सुलह कराना ना बहुत बड़ा नेकी का काम है, बहुत बड़ा नेकी का काम, यानी इतना बड़ा ये नेकी का काम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो नमाज रोजे और जकात से भी अफजल है। तो सहाबा ने अर्ज किया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया आपस में सुलह कराया, जबकि लोगों में फूट और फसाद डलवाना जो है वो दीन को मूंड देने वाली चीज है। तो हम बच्चों को शुरू से ये सिखाएं कि अल्लाह ताला को हुक्म है कि सुलह करो, तो सुलह की सफाई के साथ रहना, ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें लड़ाइयां करते रहो। तो छोटे लेवल से ही फिर ये चीजें शुरू होती हैं और फिर बड़े होते तक फिर तो ये बड़ों का काम होता है कि वो सुलह की अहमियत को अपने घरों के अंदर सबसे पहले वाजे करें औलाद के सामने कि सुलह कितनी अच्छी चीज है और झगड़ा कितनी बुरी चीज है, कि झगड़ा फसाद मूंड देता है, शेव कर देता है दीन को, दीन नहीं रहता फिर, मूंड देते जैसे सर के बाल मूंड दिए जाते हैं ना, फिर कोई बालों का नामो निशान नहीं रहता, इस तरह ये दीन को मूंड देता है। ये जो फितना फसाद फूट आपस के अंदर लड़े में है झगड़े में है, हम देखते हैं खानदानों के अंदर लड़ाइयां, बहन बहन से नहीं बात कर रही, भाई बहन बात कर रहा, चचा फूपी इनके दरमियान लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, तो हम बस आराम से बैठे रहते हैं, हमें क्या, लड़ते रहें हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करते ही नहीं है, और कोशिश भी की तो थोड़ी बहुत कोशिश की बस। अगर हमें ये समझ आ जाती ना, ये तो नमाज रोजे ज़कात से भी ज़्यादा अफजल है, तो हम भाग भाग के कोशिशें करें, बल्कि इसको एक पॉइंट बनाएं कि मैंने ये नेकी कमानी है। अगर इनकी सुलह हो जाती है तो कितना बड़ा मुझे सवाब मिलेगा कि नमाज रोजे से भी ज्यादा है। हम इन चीजों पे कितनी तवज्जो देते हैं ना, नमाज पढ़े रोजा रखें मैं नेक बन गई, ये देखें अफजल है उससे। इसी तरह आपसे सलम ने अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला से फरमाया क्या मैं तुम्हें एक तिजारत के बारे में ना बताऊं, तो उन्होंने फरमाया क्यों नहीं या रसुल्ला, फरमाया जब लोगों में झगड़ा फसाद हो तो सुलह करवा दिया करो, और जब आपस में दूर हो जाए तो उनको करीब कर दिया करो। अब देख लें हम घरों में देख लें डिविजन्स हैं, हम इसी तरह दफ्तरों में देख लें, हम कारोबारों में देख लें, हम मस्जिदों में देख लें, इवन वहां पे भी एक दूसरे के खिलाफ मतलब इतनी सी चिंगारी होती है, उसको कुछ लोग भड़काते हैं, उस पर तेल डालते हैं ताकि और भड़के बजाय सुलह कराने के, और उससे फिर सारी जगह आग फैल जाती है, ग्रुप बंदियां हो जाती हैं, वो एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, वो ये ग्रुप उसके खिलाफ जहर उगल रहा है, वो उसके खिलाफ जहर उगल रहा है, कभी एक दूसरे की शिकायतें पुलिस में जाके लगा देते हैं, झूठी शिकायतें ताकि वो फंस जाएं किसी तरह। और इसी तरह इसको सदका भी कहा गया, अफजल सदका। क्या आप ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे सदके के बारे में ना बताऊं जिसके मसरफ को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है? ये सदका ऐसा है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कौन सा? कि आपने फरमाया तुम लोगों के दरमियान सुलह कराया करो। तो कोई ऐसा नहीं है हम में से जो मुसलह हो, सुलह कराने वाला। हमेशा उसका काम ही है कि जिधर जाता है सुलह कराता है। बच्चों को भी जब पता चल जाएगा ना कि माँ सिर्फ ये नहीं कि उनकी लड़ाई बंद करा दे, बल्कि अब इसके बाद सुलह कराओ कि जिसका कसूर है उससे दूसरे का सॉरी कराओ, और फिर आपस के अंदर कहो कि ये नहीं कि सिर्फ झगड़ा खत्म हो गया तो बस जाओ जाके घर, नहीं अब आपस में सुलह भी करो, गले मिल लो, दिल को साफ कर लो, इस तरह से करके सुलह कराई जाए। बड़े हैं तो बड़ों में करा दें, छोटे हैं छोटों में करा दें, लेकिन इसको समझ लें कि ये तो इतना अल्लाह ताला को पसंद काम है, और ये सदका भी है, और ये अफजल नेकी भी है, और ये नफामंद तिजारत भी है, तो मैं क्यों ना करूं, ये कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम कहते हैं हम ना, हमें क्या जरूरत है बुरा बनने की, क्योंकि जाहिर है जब आप एक को कुछ बनाएंगे कुछ कहेंगे बाज दफा इंसान बुरा भी बन जाता है, लेकिन हमसे ये तो नहीं ना हो सकता। हम कहते हैं हमें क्या, फिर हम क्यों बुरा बने, जाओ लड़ते रहो। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये इतना बड़ा अजर हमें मिलेगा, उनका तो बाद की बात है ना जो उनका फायदा होगा, हमें खुद अजर मिल रहा है, तो हम हरीस हों इसके लिए। तो अल्लाह ताला मुकसितीन को पसंद करता है, इंसाफ करने वाले, और इसमें इंसाफ करना है, ऐसे ही बेजा किसी की साइड नहीं लेते रहना कि जिसका कसूर है उसकी साइड पे खड़े हो जाए किसी भी वजह से। आप अपनी माँ और अपनी भाभी के दरमियान कोई झगड़ा हो गया तो मैं माँ का साथ दूं क्योंकि जिन्हें मेरी माँ है ना, इसलिए नहीं, वो कितना ही करीबी रिश्तेदार हो, हक और अदल का, इंसाफ का साथ देना है। और ऐसे लोग कयामत के दिन मोतियों के मिंबरों पे होंगे रहमान के दाएं तरफ। सोचें जरा, ऐसे खूबसूरत तख्त होंगे, उन मिंबरों पे बैठे होंगे क्योंकि अदलो इंसाफ करते थे। फिर फरमाए इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, असली वो बना अखवैकुम, वो भाई ही रहेंगे, उनके दरमियान सुलह करा दिया करो, ये आपस में भाई भाई हैं। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म ना करे, ना उसको रुसवा करे, उसको बेइज्जत ना करो कि आप किसी कंपनी में हो उसका नाम दे दिया, उसको रुसवा कराया और बड़े खुश हो रहे हैं, उसकी लेग पुलिंग की। जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह इसकी जरूरत पूरी करता है, और जो शख्स किसी मुसलमान भाई से मुसीबत को दूर करता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन की मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर कर देगा, और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा का पर्दा रखता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसका पर्दा रखेगा। ये बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है। तो मुसलमान के कितने हकूक हैं, उसका पर्दा रखा जाए ताकि अल्लाह हमारा पर्दा रखे। ये नहीं कि उसकी बातों को फैलाएं, फलां की बेटी ये ऐसे कर दिया, फलां का बेटा ये हो गया, फलां के घर में तुम्हें पता है उनकी तो तलाक हो गई, उनके साथ तो झगड़े हो गए, उसका ये हो गया। हम पर्दे रखें, फिर किसी की मुसीबत है तो उसकी मुसीबत को दूर करें, ना कि उसके इश्तिहार लगाएं, उसके लिए कोशिश करें ताकि अल्लाह हमारी कयामत के दिन की मुसीबतें दूर कर दे। उसकी कोई जरूरत है तो उसकी जरूरत पूरी कर दें। कोई नहीं, किसी के पास कोई चीज नहीं है उसकी जरूरत पूरी कर दी, किसी को कोई नौकरी नहीं थी उसकी नौकरी दिला दी, किसी के रिश्ते की जरूरत थी उसके रिश्ते कराने में उसकी मदद कर दी, कि किसी तरह से भी मदद करें। किसी को आपको पता चलता है तो ये ना कहें हमें क्या, करते फिरें, हमने कोई इनका ठेका ले दिया होगा, नहीं, आप जरूरत पूरी करेंगे अल्लाह आपकी क्यामत के दिन की जरूरियात पूरी करेगा। लेकिन वी डोंट केयर, हम जब किसी को देखते हैं ना कि किसी की मदद कोई कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो फिर हमें भी जाग आ जाती है और हम कहते हैं अच्छा चलो हम भी कुछ, लेकिन वैसे कोई हमसे कुछ कहता रहे हमें परवाह भी नहीं होती, या ना भी कहे हमें पता है कि इसकी ये जरूरत है तो कर दे पूरी। कभी कभी हमारा कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ दो बोल मुंह से बोलने होते हैं, हम वो भी नहीं कहते बिकॉज वी डोंट बॉर्डर। इस तरह आपसे सर ने फरमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की तरह है, जो एक जिसके अज्जाए एक दूसरे को मजबूत करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिनों को देखोगे कि एक दूसरे पर रहम करने में और एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाने में और शफकत करने में एक जिस्म की तरह है। तो मोमिनों का ये खासा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हम तो लगता है मोमिन ही नहीं क्योंकि हम तो एक दूसरे को काटने में ज्यादा लगे रहते, हमें दूसरे की तकलीफ का तो एहसास ही नहीं होता कि दूसरा तकलीफ में। तो मोमिनों को बताया कि इख्वा है, चाहे वो कहीं है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो कोई जुबान बोलता है, वो भाई है। क्यों? इसलिए कि ईमान के रिश्ते ने उनको भाई बनाया। खून का रिश्ता नहीं, ईमान का रिश्ता। देखिए, खून के रिश्ते जो है ना, वो हमारे इस वजह से होते हैं कि हमारे हमारी माँ और बाप सेम है। ये वाला रिश्ता जो है ना, ये अल्लाह ताला ने ईमान की वजह से हमें दिया होता है, और ये अल्लाह ने बनाया है ये रिश्ता ईमान की बदौलत। तो ये भी एक रिश्ता है जिसकी वजह से हमारी किसी के साथ रिश्तेदारी है। अगर हमें सिर्फ हमारे खून के रिश्ते तो प्यारे हैं, लेकिन एक रिश्ता अल्लाह के नाम पे हमारा बना है, क्योंकि ईमान क्या है? अल्लाह का नाम लेने में हम सब एक है ना, एक जमात, एक चीज ने हमें जोड़ा है, और वो अल्लाह पे ईमान, उसने जोड़ा हुआ हमें। तो अल्लाह पे ईमान तो हमें इतना महबूब नहीं है, लेकिन खून हमें ज्यादा महबूब है। उनके रिश्ते अपनी जगह हैं, वो भी हैं, उनका भी हक है, लेकिन ये भी एक रिश्ता है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो रहम कब आता है? जब इंसान में तकवा होता है, अल्लाह का डर होता है। तो जिस तरह एक खूनी रिश्ते में एक भाई दूसरे के लिए हमदर्दी रखता है, और इसी तरह ईमान के रिश्ते में भी दूसरे के साथ हमदर्दी रखना, ये एक ब्रदरहुड है। इस ब्रदरहुड में आप बंध गए। अल्लाह अकबर। हम देखते हैं सहाबा कराम कैसे इख्तलाफ रखने के बावजूद, ये नहीं कि कभी इख्तलाफ नहीं हुआ, इख्तलाफ रखने के बावजूद एक दूसरे के साथ जुड़े रहे थे। اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه لي في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. इस दुआ को आप लोग याद भी कर लीजिए, बहुत प्यारी दुआ है और इसकी हमेशा तड़प भी रखिए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.